नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी 4G सेवाओं का शुभारंभ किया। इससे भारत उन कुछ देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अपना दूरसंचार नेटवर्क बनाने में पूरी तरह सक्षम है। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान को नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी। भारत ने दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन 2 स्वर्ण पदक जीते। पदकों की कुल संख्या 7 हुई। और दिल्ली में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स में शैलेश कुमार ने पहले ही दिन पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के एक बड़े प्रयास के तहत समूचे भारत में 97,500 से अधिक नए 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया है। इनमें 92,600 टावर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस हैं। BSNL द्वारा लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इन टावरों से और 30,000 गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में झारसुगुड़ा में इस सेवा की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत 2G, 3G और 4G तकनीकों के मामले में पिछड़ गया था, लेकिन BSNL के स्वदेशी में निर्मित विकसित 4G नेटवर्क से अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो अपना दूरसंचार नेटवर्क बनाने में सक्षम है।
टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है।
श्री मोदी ने 2014 से सरकार द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2017 में GST लागू होने के बाद नागरिकों पर कर का बोझ काफी कम हो गया है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के बरहामपुर और गुजरात के सूरत स्थित उधना के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाई और 2 मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन की घोषणा की। इससे इन्हें विश्वस्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में परिवर्तित किया जा सकेगा। ओडिशा की क्षमता के बारे में श्री मोदी ने कहा कि हाल में 2 सेमीकंडक्टर इकाइयों और 1 सेमीकंडक्टर पार्क योजना को मंजूरी मिलने से राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने राज्य की प्रगति का श्रेय केंद्र और राज्य की दोहरे इंजन वाली सरकार को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। न्यूयॉर्क में कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अवसर पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स के भावी अध्यक्ष के रूप में की।
एक संयुक्त मीडिया वक्तव्य में मंत्रियों ने आतंकवाद के प्रतीक कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे आपराधिक और अनुचित बताया। उन्होंने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, उनके वित्त पोषण और सुरक्षित पनाहगारों सहित आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रियों ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों तथा उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करने का आग्रह किया। मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान भी किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। मंत्रियों ने व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों पर चिंता जताते हुए विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विपरीत एक तरफा टैरिफ और गैर टैरिफ बढ़ाने पर गंभीर चिंता प्रकट की। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा और दक्षिण अफ्रीका की महिला युवा तथा दिव्यांगजन मामलों की अध्यक्षीय मंत्री सिंडिसिवे चिकुंगा ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर एक बैठक की। 13वीं IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक के मीडिया वक्तव्य में मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल में हुए आतंकवादी हमले में नागरिकों की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के माध्यम से विविधता में एकता की भावना को मजबूत किया है।
हमारे देश में सैकड़ों बोलियां हैं तो कई भाषाएं, हर इलाके का अलग पहनावा है और अलग खान पान है। इसके बावजूद कुछ है जो हमें एक धागे में बांधता है। इसी भावना को मजबूत करने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना ये है, हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। मान लीजिए हरियाणा तय करे कि भाई 2016 हम तमिलनाडु से जुड़ेंगे, तो 2016 में हरियाणा में स्कूलों में बच्चों को कम से कम 100 वाक्य तमिल भाषा के सिखाए जाए, हर बच्चे को तमिल का एक गीत सिखाया जाए। एक साल भर हरियाणा में तमिलनाडु चलता रहे और तमिलनाडु में हरियाणा चलता रहे, देश की एकता को जोड़ने का, देश के अन्य राज्यों को पहचानने का, अन्य भाषाओं को जानने का एक सहज उपक्रम बनेगा।
सदियों से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं पूरे देश को बांधे हुए हैं। स्थानीय उत्पाद अपनी माटी की सौंधी गमक को न सिर्फ समेटे हुए है बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का माध्यम भी है। प्रधानमंत्री ने अक्सर लोगों से अपील की कि उन्हें वे अपनाएं।
मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा भारत जिस तरह अपनी क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, उसी तरह कला, शिल्प और कौशल की विविधता भी हमारे देश की एक बड़ी खूबी है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां की कुछ न कुछ खास और लोकल चीज के बारे में आपको पता चलेगा।
एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी पहल है जिससे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति और लोक परंपराओं को न सिर्फ नजदीक से देख रहे हैं बल्कि वहां के लोगों से आत्मीय रिश्ता भी बना रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव की शुरुआत 22 सितंबर से हुई। इससे समाज का हर वर्ग अब लाभान्वित हो रहा है। अगली पीढ़ी के GST सुधारों से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम हुई है और लोगों को राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने खेल के सामान पर कर में बड़ी कटौती की घोषणा की है। नए कर ढांचे में खेल के सामानों पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य खेल उपकरणों को अधिक किफायती बनाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और देश भर में खेलों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह निर्णय उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाएगा और साथ ही फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देगा। नए GST सुधारों के अंतर्गत साइकिलों पर भी कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं साइकिल के पुर्जों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। इस कटौती से साइकिल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और छात्रों, फिटनेस प्रेमियों तथा युवाओं पेशेवरों में साइकिल चलाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस महीने की 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। सकलीन अख्तर के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। चीन के हांगझोऊ में आयोजित विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस में ये घोषणा की गई। ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत के पश्चिम हिमालय में लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये क्षेत्र अपनी अनूठी जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल और सरचू क्षेत्र शामिल हैं। पश्चिमी हिमालय का यह क्षेत्र समुद्र तल से 3 से 5 हजार मीटर की ऊंचाई और हिमालय की वर्षा छाया में होने के कारण शीत मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। यहां का मौसम शुष्क, ठंडा और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है, जिसके कारण ये स्थान हिमालय जीव जंतुओं और दुर्लभ वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास है। यहां हिम तेंदुआ, साइबेरियन आइबेक्स, हिमालयन ब्लू शीप और कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही चंद्रताल जैसी ऊंचाई पर स्थित झीलें और बर्फ से ढकी चोटियां इस क्षेत्र की भव्यता को और बढ़ाती हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं धर्मेंद्र मणि राजेश।
दक्षिण कोरिया के पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते। इनमें आज प्रतियोगिता के अंतिम दिन व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग के 2 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में शीतल देवी और पुरुषों के वर्ग में तोमन कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने 3 पदक जीते। पुरुषों के हाई जंप 163 वर्ग में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक और वरुण सिंह भाटी ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक देशों के 1000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में भारतीय निशानेबाजों ने ISSF जूनियर विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में शीर्ष 2 स्थान हासिल किए। रश्मिका और कपिल ने एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। वंशिका चौधरी और एंटोनी जोनाथन गेविन को इसी स्पर्धा का रजत पदक मिला। धर्मेंद्र मणि राजेश, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्ण निर्वाचन आयोग 4 और 5 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयोग की टीम का नेतृत्व करेंगे। इस दौरे से पहले चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की ब्रीफिंग 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी 4G सेवाओं का शुभारंभ किया। इससे भारत उन कुछ देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अपना दूरसंचार नेटवर्क बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। तमिलनाडु के करूर में एक रोड शो के दौरान मची भगदड़ में 13 लोगों की मौत। यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान को नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी। भारत ने दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन 2 स्वर्ण पदक जीते। पदकों की कुल संख्या 7 हुई। और दिल्ली में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स में शैलेश कुमार ने पहले ही दिन पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।